देवियों सज्जनों, आज के इस होली पर्व पर आपको बहुत बहुत बधाई। यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद में कहा कि व्यक्ति अगर ज्यादा दिन दिना जीना चाहता है तो काम करते हुए जीने की कोशिश करनी चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा। अगर लॉन्ग लाइफ चाहिए तो एक्टिव लाइफ जीना जरूरी है। काम करते हुए जीने की इच्छा रखो। और सब काम करते हैं ज्यादातर लोग। अगर आप काम करते हैं और रोज सुबह आप उठते हैं, अपनी रूटीन का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, शाम को आते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, एक रिपीटेशन ऑफ लाइफ होता रहता है। एक चीज को रिपीट करते हैं, फिर धीरे धीरे जो चीजें अच्छा लगता है वो फिर अच्छा नहीं लगने लगता है। मोनोटोनी आ जाती है लाइफ में, एक रस आ जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी चीज उसको कितना भी अच्छा लगे वो हमेशा नहीं कर सकता। उसको चेंज चाहिए, लाइफ में चेंज चाहिए, रस में अलग चेंज चाहिए, जीवन में बदलाव चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि और मुनि या पूर्वजों ने त्योहारों के पर्वों की व्यवस्था की। त्योहारों को संस्कृत में पर्व कहते हैं। पर्व का अर्थ होता है गांठ। जैसे आपके गन्ने में जो शुगर केन होता है या बांस होता है, बॉम्ब ट्री, अब उसमें देखेंगे गांठ होता है बीच बीच में, इसको संस्कृत में इसको भी पर्व बोलते हैं। लाइफ में आप भाग दौड़ कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रेस्ट करो, अपने लिए टाइम निकालो, लाइफ को एंजॉय करो, फिर अगले दिन और फिर दोबारा नए जोश के साथ, नई शक्ति के साथ, नई स्फूर्ति के साथ फिर अपने काम में लग जाओ। ये जो लाइफ में कभी कभी ठहरना, इसे हम पर्व बोलते हैं। त्योहार को या फेस्टिवल को दूसरे शब्द हम यूज करते हैं, उत्सव। संस्कृत में जो शुभ शब धातु है, सुधातु, मस्ती करना, एंजॉय करना लाइफ को, जब आप पूरी तरह मस्त होते हो उसे उत्सव कहते हैं। वो उत्सव आपके दिवाली का हो, उत्सव शिवरात्रि का हो, जन्माष्टमी का हो, होली का हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, एग्रीकल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, बहुत सारे पॉलिटिकल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। अपने देश की इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, यूएसए में भी आप बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं जो हिस्टोरिकली जरूरी है। क्योंकि सिर्फ सेलिब्रेशन रैंडमली करना, एमलेसली करना तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है, तो एक पर्पस होता है। उस सेलिब्रेशन के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी होती है कि हम जीवन को जिए, ठीक से जिए। और अगर ऐसा आप नहीं करते, आपकी लाइफ में कोई कलर नहीं है, कोई फेस्टिविटी नहीं है, कोई एंटरटेनिंग नहीं है, आप कहां एंटरटेन करते हैं, वो आपकी नेचर पर डिपेंड करता है, आपकी टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। कोई दरवाजा बंद करके अकेले 5 घंटे मेडिटेशन में एंटरटेन करता है, कोई क्लब में जाकर नाच के एंटरटेन करता है, कोई टीवी में मैच देख के एंटरटेन करता है, वो आपके और हमारी जिस तरह की एटीट्यूड है, टेंडेंसी है, उस पर डिपेंड करता हो। पर लाइफ में जिसमें फेस्टिविटी होनी जरूरी है, जहां भी मजा आता है उसमें करना जरूरी है, नहीं तो आप चाहे न चाहे आपकी लाइफ कब आपके लिए मिजरेबल हो जाएगा आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, तब बहुत लेट हो जाता है। व्यक्ति लाइफ में कब उब चुका है, अपने से ही कब उब चुका है पता ही नहीं चलता। अगर आप त्योहारों में मजे नहीं ले पाते, अगर आपके लाइफ में किसी चीज में कोई मजा नहीं आ रहा है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, अपने लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। मनुष्य कुछ भी करता है इसीलिए करता है कि दुख की निवृत्ति हो, दुख हट जाए, सुख मिले, दो ही पर्पस है। आप पैसा कमाते हैं, बच्चे पालते हैं, घर गृहस्थी करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके दो ही इंटेंशन है कि दुख ना हो, अगर है तो वो दूर हो जाए और सुख मिले, तीसरा तो कोई गोल होता नहीं है। तो होली जैसे फेस्टिवल हमें वो खुराक देते हैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जिससे कि मन की जो स्वभाव है चंचलता है, मन का स्वभाव ही है चंचल होना, उसको कुछ खुराक मिले तो वो शांत हो, तो हम फिर नए जोश के साथ काम में लगें। अगेन आई एम सेइंग, हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग इट अप टू यू। आप हवन करके सेलिब्रेट करते हो या बियर का बोतल खोल के सेलिब्रेट करते हो, ये तो आप पर डिपेंड करता है। पर असली बात है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए, और ये नेचर है, ये सिर्फ मेरा और आपका नेचर नहीं है, ये संसार का नेचर है जी। दुनिया में हर चीज ईश्वर का बनाया हुआ हर चीज सेलिब्रेट करता है, एवरी मोमेंट सेलिब्रेट करता है। जब आप संसार को देखो, पेड़ पौधों को देखिए, वो भी बदलते रहते हैं, कभी हरे पत्ते, कभी सूखे पत्ते, कभी रंग रंगे अलग अलग फूल, उसमें फल आते हैं, मीठे खट्टे, बदलाव चलता रहता है। पेड़ों में भी, जंगलों में भी फॉल सीजन होता है, पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ बिल्कुल ऐसे मरे हुए से लगते हैं, दो महीने के बाद क्या खूबसूरत फूल खिल जाते हैं, चार महीने के बाद पत्तों से भरे हो जाते हैं। नदियों को देखें, नालों को देखें, जंगलों को देखें, पेड़ पौधे देखें, माउंटेन्स देखें, और आप जाते तो रहते हो, पैसा खर्च करके घूमने जाते हो, क्या देखने जाते हो? उस नेचर की जो फेस्टिविटी है, और फेस्टिविटी क्या है, अगर इस कल्पना करिए पूरा संसार एक जैसे होता, मतलब पहाड़ी होता और कुछ नहीं होता, ना पेड़ होते, ना पौधे होता, ना पानी होता, ना नदी होती, ना समुंदर होता, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी, सारी धरती मिट्टी और कुछ नहीं, कैसा दिखता दुनिया? शाम को आप आकाश की ओर देखते हैं, खुले आसमान में भी रोज आपको अलग अलग दिखते हैं, आकाश दिखता है, कभी तारों से भरा हुआ, कभी खाली आकाश जिसमें एक भी तारा नहीं, कहीं एक एक ज्यादा तारा, कहीं चांद पूरा, कहीं छोटा, ये वेरिएशन नेचर की पार्ट है। नेचर में भी नहीं तो वो मोनोटोनी आ जाएगी। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, नेचर के साथ जोड़ते हैं, तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। इसलिए जो लोग जितना कम सिविलाइज्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, वो ज्यादा, जो लोग जितने कम सिविलाइज्ड हैं, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मतलब आप सिटीज में रहते हैं, मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, शो करते हैं, आपके खान पान, कपड़े, घर, गाड़ी, ये आपकी जरूरतों से ज्यादा शो होता है, लाइफ इतना हिपोक्रेटिक कृषि से भरा हुआ होता है कि ऊपर से आप कितना भी दांत फाड़ के जबरदस्ती ओंठ दिखा के हंसे, अंदर परेशानी से घिरा रहता है। और जो व्यक्ति जितना अनसिविलाइज्ड है, जंगल में रहता है, पहाड़ों में रहता है, ट्राइबल है, गरीब है, वो ज्यादा नेचर के साथ रहता है, वो गरीब भी होगा पर वो आपसे और हमसे ज्यादा खुश मिलेगा, क्योंकि वो नेचर से इंस्पिरेशन लेता है। वो पेड़ों में खिले हुए फूलों को देख करके हंस पड़ता है, वो शाम को आकाश की नीले आकाश को देख करके मदहोश हो जाता है, वो किनारे बैठ करके मछलियों को खेलते हुए देखकर खुश हो जाता है। हम नहीं हो पाते हैं। हम तालाब के किनारे बैठकर भी गॉसिप करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, मजा नहीं आता है मछलियों के खेलने में, पेड़ों के फूलों में, क्योंकि हमने सिविलाइज्ड जो सो कॉल्ड हमें कहा कि ये सिविलाइज्ड लाइफ है, इसमें हिपोक्रेसी ज्यादा है, कॉन्स्पिरेसी भरी पड़ी है। कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ, कि मैं सुखी नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास ये है, और जो कुछ है उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है देवियों सज्जनों? मनुष्य का तो सुप्रीम गोल है, जो चार हर इंसान की नेचुरल एस्पिरेशन है, गोल है, हम उसे पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर इंसान के चार लक्ष्य होते हैं, वो मानता है नहीं मानता है, और हमारे धर्म में कल्चर में वो चारों को रिस्पेक्ट किया जाता है। हर व्यक्ति जीवन में कोशिश करे इन चारों को पाने के लिए, धर्म, वर्च्यू, मेरिटियस थिंग्स, कुछ अच्छा काम करना जिससे हमें कुछ अच्छा मिलेगा। माइथोलॉजिकल वे में आपको स्वर्ग मिलेगा, सामान्य भाषा में हम धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं कि हमें सुख मिलेगा। दूसरा, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, धन संपत्ति हो, मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, होड करूं, उसे हम अर्थ कहते हैं। किसी ने नकारा नहीं है, होल हार्टली एक्सेप्ट करते हैं हमारे ऋषि मुनि। काम, जो फिजिकल डिमांड्स है, जो शरीर की डिमांड है, उसको भी पूरा करें, सेंसुअल प्लेजर हर मनुष्य को चाहिए। चौथा, मोक्ष, मुक्ति। वो मुक्ति क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सफरिंग, पेन्स। जब हम टेम्पररी फ्रीडम चाहते हैं तो टेम्पररी काम करते हैं, सोचते हैं पैसे से दुख कम हो जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी, तो पैसा कमाते हैं। नाम कमाने से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कम होगा तो नाम कमाते हैं, पर टेम्पररी है। जो स्मार्ट लोग है वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं फ्रीडम की, और वो खुद को जानने की, संसार को समझने की, ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, वो आध्यात्मिकता है। पर आपको पता है जो आत्मज्ञानी होता है, जो खुद को समझ लेता है, उसका सिम्टम क्या है? कि वो हर परिस्थिति में खुश रहता है, मस्त रहता है, आनंद से भरा हुआ रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन गाली देता है, कौन तारीफ करता है, क्या खाना मिलता है, नहीं मिलता है, हर परिस्थिति में वो लाइफ को एंजॉय करता है। देवियों सज्जनों, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का जो आखिर गोल है, जो सुप्रीम गोल है, वो है कि परमानेंट एंजॉयमेंट, फेस्टिविटी, जीवन की जो स्थायी उत्सवता है, उसे ही अध्यात्म का अंतिम छोर कहा जाता है, सुप्रीम गोल कहा जाता है। अगर इस लाइफ में हमने कुछ लाइफ को फेस्टिव नहीं बना पाया तो फिर क्या अध्यात्म, क्या? अगर आपकी ईश्वर भक्ति से, पूजा से, पाठ से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, साधना से आपका मुंह ज्यादा खड़ूश होता जा रहा है, बेकार है। अंदर कोई खुशी ही नहीं है। कह रहे हो मैं 50 साल से भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, पर आपको देखते सामने वाले का मुंह खराब हो जाता है। और आप कहते हो कि मैं योगी हूं, सन्यासी हूं, तपस्वी हूं, ऋषि हूं, कहां है वो आनंद? तो आप तो किसी गलत तरीके से, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो, या गलत तरीके से कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो ना करते हुए कुछ दिखा रहे हो कि आप कर रहे हो। अगर सचमुच को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते तो आपके अंदर भी वो खुशी झलकती और बाहर भी दिख जाता। पुराणों की कहानियों में आप पढ़ते हैं ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास पशु पक्षी इवन एक दूसरे से जो दुश्मन है, शेर है, बकरी है, सांप है, नेवला है, इंसान है, वाइल्ड एनिमल है, साथ साथ घूमते फिरते रहते थे। दुश्मनी वहां नहीं दिखती थी, इतना ऋषियों का प्रभाव होता था। वो अंदर से इतना खुश रहते थे, उनके आसपास आने वाले लोग भी खुश रहते थे। वो जो वाइब्रेशन है वो फील होता है देवियों सज्जनों। अगर अंदर वो खुशी नहीं है, वो उत्सव नहीं है, वो मजा नहीं है, तो आप दूसरों को नहीं दे सकते हो। लुक एट द नेचर, देयर इज एग्जिस्टेंस एंजॉइंग होली एवरी डे। अब होली कब मनाते हैं? द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। फाल्गुन का पूर्णिमा पूरी होती है, महीना पूरा होता है, अगले दिन वसंत की शुरुआत में आप सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोली सेलिब्रेट करते हो कलरों का फेस्टिवल, नेचर भी सेलिब्रेट करता है। ठंड में सारे पेड़ सूखे दिखते थे, अब देखिए हरे भरे फूलों से हरा भरा। आप अपना बैकयार्ड देखो, फ्रंट यार्ड देखो, साइड यार्ड देखो, कुछ भी देखो। और ऐसा नहीं कि आपको यूएसए में देखो, अब अफ्रीका में देखो, इंडिया में देखो, एशिया में देखो, यूरोप में देखो, जहां भी जाओ नेचर होली सेलिब्रेट कर रहा है, कलरफुल है। पर वो अंदर से कलरफुल होना चाहिए जीवन में। हर रोज आप होली मना सकते हैं अगर आपका लाइफ कलरफुल हो। हम बड़े रूटीन लाइफ जीने की आदि हो चुके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ जीने की, तो मजा खत्म हो जाता है। शादी करते हैं बड़े धूमधाम से, लाखों करोड़ों रुपए डॉलर खर्च करते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन का सारा यहीं पर सुख है। 10-15 साल के बाद पति पत्नी को देखोगे, ओ माय गॉड, लगता है इतना ताम धाम से शादी किया हुआ होता है, वो रसी खत्म हो जाता है, वो लाइफ में मोनोटोनी आ जाती है। इसलिए कि हम लाइफ को जी नहीं पाते, खुद के साथ न्याय नहीं कर पाते, तो पार्टनर के साथ क्या करेंगे देवियों सज्जनों? अगर आप खुश नहीं हो, आप पार्टनर को भी खुश नहीं रख सकते हो, आप अपने किसी को भी खुश नहीं रख सकते हो, अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो। इसी को होली कहते हैं देवियों सज्जनों, कि जीवन को खुश रखो, जैसा है जितना है उसमें एंजॉय करो। ऑरेंज को एप्पल बनाने की कोशिश मत करो, एप्पल को ऑरेंज बनाने की कोशिश मत करो। ऑरेंज में ऑरेंज है तो ऑरेंज में एंजॉय करो, एप्पल में एंजॉय करो। कभी गुलाब नहीं लड़ता है कि मैं ट्यूलिप क्यों नहीं हूं, ट्यूलिप की डिमांड आजकल बढ़ गया है, तो ट्यूलिप ये नहीं सोचता कि मैं गुलाब क्यों नहीं हूं कि मेरे में स्मेल कम है। दोनों अपने आप में सुंदर हैं, अपने आप में इतराते हैं, इठलाते हैं, अपनी खूबसूरती में, अपने सुगंध में मस्त हैं। हमें अगर वो चीज अपने आप में मजा ना आने लगे, मुझ में अपनी मजा ना आने लगे, मैं दूसरों के लिए मजे का कारण नहीं बन सकता। इसीलिए नेचर को देखें, पहाड़ की ऊंचाइयों को देखें तो समुन्द्र की गहराइयों को भी देखें, अलग अलग पेड़ों के रंग बिरंगे चीजों को देखें, सूरज की रोशनी को भी देखें और अंधेरे के कालेपन को भी देखें, सब में आनंद है जी। सूरज कितना भी रोशनी वाला हो, आप 24 घंटे रोशनी को नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको थोड़े अंधेरे का भी आनंद आता है, रात की भी जरूरत है। रात को मजा अगर आपको नहीं आता, केवल दिन दिन में आता है, तो आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ रात में आनंद आता है, दिन में नहीं आता है, आप साइकोलॉजिकली एक्चुअली डिसऑर्डर्ड हो। लाइफ कलरफुल है, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है देवियों सज्जनों। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन वसंत के शुरुआत के साथ आता है, और ये वसंत को सेलिब्रेट करने का तरीका है, और उसी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं वसंत को जैसा वसंत है देवियों सज्जनों। वसंत कैसा है? कलरफुल है। इससे पहले ठंड था, बड़ी फिजिकली भी बड़े तकलीफ, नेचर में भी सब सूखा सूखा, नेचर का सूखापन दूर हुआ, रंग बिरंग हुआ, मौसम सुहावना हुआ, और हम उस ऋतु को उसी तरह सेलिब्रेट करते रंगों से। पर मन का भी रंग अलग अलग होना चाहिए। होली जब शुरू हुई उसकी हिस्ट्री है, हर फेस्टिवल की अपनी एक हिस्ट्री है। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। जब स्प्रिंग आता है, किसानों के खेतों में फसल लहलहाते हैं, पकने की कगार पर आ गए हैं, अभी एक दो महीने के बाद कटाई शुरू होगी, काम अब नहीं है, लोग सेलिब्रेट करते हैं वसंत का सुहावने मौसम को। कहीं कहीं पहला फसल आ जाता है हार्वेस्टिंग का, पहला फसल जो जल्दी आने वाले फसल है आ जाते हैं, और उस फसल के हमारे यहां ट्रेडिशन था, घर में कोई भी चीज पहली बार आए उसे हम अकेले नहीं खाते हैं, उसे हम शेयर करते हैं, और शेयरिंग का पहला हिस्सा हमारे और आपका ईश्वर को जाता है, प्रभु को जाता है। तो यज्ञ के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं, जो घर में चीज आया उसे यज्ञ में आहुति के रूप में देते हैं, बाद में आस पड़ोस पड़ोसी बंधु बांधव में उसको बांटते हैं, फिर हम खाते हैं। आज भी आपके बैकयार्ड में सब्जी उगता है तो आप अपने दोस्तों में मित्रों में बांट देते हो, सारा अकेला नहीं खाते हो, अगर खाते भी हो तो नहीं खाना, और करते हो आप। ये हमारा ट्रेडिशन था, ये कल्चर है कि कम से कम जो पहला घर में चीज आए वो हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं दिल्ली में जिस गुरुकुल में पढ़ाता था 12-14 साल, मैंने एक वहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखा, कोई किसी को बताता नहीं था। जो भी बच्चे वहां पढ़ते थे, 12-13 साल 14 साल पढ़ के जाते थे, जब उनकी नौकरी लग जाती थी या काम पर होता था, उनकी जो पहली सैलरी वो घर में मां बाप को नहीं देते थे, वो गुरुकुल में डोनेट करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, पहली सैलरी वो देते हैं। कोई पूरा देता है, कोई आधा देता है, किसी ने कभी मांगा नहीं, बोला नहीं, वो ट्रेडिशन बन चुका है उनका कि पहली चीज अच्छे काम में लगनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, लाइफ तो पड़ी है, कमाते रहेंगे। ये एक बड़ा सुंदर परिकल्पना थी हमारे ऋषि मुनियों की, जो तुम्हारे पास है उसको शेयर करो पहले बार, और सबसे शेयरिंग का पहला हिस्सा ईश्वर को देना है, फिर आप दूसरों को बांटें। और उस बांटने में खाने में भी अगर आप जॉयफुल हैं तो वो होली हो जाती है। होली वसंत उत्सव भी है, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। दुनिया में अलग अलग देशों में लोग स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं, और भारत में भी आजकल लोगों को हर चीज रिलीजियस दिखता है, हमको जरूरत से ज्यादा ही, पता नहीं दिल से है या हिपोक्रिटिकली है, को रिलीजियस दिखने की कोशिश करते हैं, उसे श्रद्धा देखते ही तो डाउट होता है। पर ऐसा नहीं था, हमारे यहां भी वसंत बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट होते थे, नाच गाना मस्ती करना, जिसका बिगड़ा हुआ रूप आज होली के रूप में देखते हैं, कभी कभी फोर्सफुली कलर करते हैं। स्मृति जी भजन गा रही थी यूपी की होली, कैसे, जिनको पता होगा उनको पता होगा, जबरदस्ती उठा उठाकर गड्ढे में फेंकते हैं, गोबर लगाते हैं। अब ये तो गुंडों की होली कहिए, पर लोगों को मजा आता है। हमारी देखो ऐसा है कि ये अगर मेरे से जुड़ा हुआ है तो वो तो अच्छा ही होगा। अब मैं अगर गोबर खाता हूं तो आप वो तो दुनिया गोबर, इसीलिए कि गोबर बड़ा न्यूट्रिशियस चीज है, क्यों जी, क्योंकि मैं खाता हूं, आप खाएं तो बड़ा फिल्थी और गंदी चीज होगी। मैं अगर पत्थर से होली खेलता हूं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट होली, क्यों, मैं खेलता हूं, मेरे राज्य की है, आपकी राज्य की होती तो मैं क्रिटिसाइज करता कितना बकवास होली है। अब वो ठीक है भाई, हर एक की अपनी चीजें अच्छी लगती है, वो बिगड़ा हुआ रूप जो भी हो, वसंत फेस्टिविटी जो है, आपको पता है कि नहीं, दुनिया का जो सबसे पहला बुक डांस ड्रामा के ऊपर है, भरत का नाट्य शास्त्र, वो 5,500 साल पुराना बुक है। आपको पता है उसमें मोर देन 40 चैप्टर्स हैं, मोर देन 1,000 पेजेस हैं, और हमारे यहां ये नाच गीतों की जो पुस्तक, ये तो भरतनाट्य शास्त्र पहला बुक बताया, सैकड़ों ग्रंथ हैं जिसके बेस पर। आप जो कहते हो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल सॉन्ग है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, ओडिसी है, वगैरह वगैरह, जो 6 आजकल 7 हो गए क्लासिकल डांस या क्लासिकल गाने हैं, वो क्लासिकल का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। जब आप फ्री बिना किसी रूल फॉलो करे नाचते हो गाते हो तो वो नॉर्मली आप बॉलीवुड डांस बॉलीवुड संग बोलते हो, पर जब स्क्रिप्चर बेस्ड करते हो तो हम उसको क्लासिकल कहते हैं। मतलब हमारे उसके लिए भी स्क्रिप्चर्स थे, शास्त्र थे, नाचने का गाने का, ये कोई अछूत बा धर्म के साथ इनका संबंध कोई अछूत संबंध नहीं था, अनटचेबिलिटी नहीं थी कि नहीं मैं बड़ा रिलीजियस हूं ये गाना नाचना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये शुरू हुआ यज्ञ वेदी पर, नाच गाने ड्रामा नाटक, बाद में मिडिवल एज में मोस्ट ऑफ डांसेस मंदिर के आसपास ही शुरू हुए, संबंध था, क्योंकि हम मानते थे कि लाइफ कोई सिंगल एक सिंगुलरिटी के साथ नहीं होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, सबका अपना अपना रोल है, खाने की भी जरूरत है, पीने की भी जरूरत है, कमाने की भी जरूरत है, मेडिटेशन करने की भी जरूरत है, पूजा करने की भी जरूरत है, गाने की भी जरूरत है, पैसा कमाने की भी जरूरत है, सेवा करने की भी जरूरत है, सब चीजों का अपना अपना रोल है देवियों सज्जनों। तो होली इज ए टाइम व्हेन मैन एंड नेचर अलाइक थ्रू अप द ग्लूम ऑफ विंटर एंड रिजॉइसेस इन द कलर्स लाइवलीनेस ऑफ स्प्रिंग, इट सेलिब्रेट्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग विद ऑल इट्स ब्यूटीफुल कलर्स एंड वाइब्रेंट लाइफ। इसीलिए होली सिर्फ आर्टिफिशियल फेस्टिवल नहीं है, नेचर के साथ कनेक्टेड है, नेचर जैसा रंग बिरंगा होता है आज के दिन, आप इसी तरह रंग बिरंग के टाइप में सेलिब्रेट करते हो। आप शरत ऋतु में नवरात्र करते हो, शरत ऋतु हमारे फेस्टिवलों का भी नेचर के साथ बड़ा कनेक्शन है, ऑटम सीजन में करते हो ना, अक्टूबर नवंबर में आप नवरात्र करते हैं, नवरात्र में क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, वो अलग बात है कि आटे की रोटी छोड़ करके वो पता नहीं किसकी पूरी तल के खाते हैं फेस्टिवल के फास्ट के नाम पर, अब वो तो अलग बात है, पर फास्ट करना, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर को पाने की कोशिश करने का फेस्टिवल था, क्योंकि शरत ऐसा ही है। शरत में सब शांत मिलता है, आकाश साफ मिलता है, पानी निर्मल दिखता है, मन भी निर्मल होता है, उस समय साधना का पर्व होता है। वसंत में सारा नेचर नृत्य करता है, रंग बिरंगा होता है, तो आप भी करिए, उसके साथ चलिए। एंड ईच कलर इज मेंट टू बी सीन एंड एंजॉयड सेपरेटली। हर कलर का अपना महत्व है। ये शायद पहला हिंदू रिलीजन या हिंदू कल्चर अपने आप में एक यूनिक कल्चर है जहां हर रंग का महत्व होता था। अब आज नहीं है, आजकल तो ये पूछते हैं फ्यूनरल में कौन सा कपड़े पहन करके जाएं, क्योंकि दूसरों को देखते हैं ना, कोई ब्लैक पहनकर जाते हैं तो हमने एक अपने आप पैदा कर दिया कि व्हाइट पहनकर चलेंगे। मैं कहां से सीखा भाई व्हाइट पहनकर जाना, हमारे लिए कोई कलर बाइंडिंग नहीं था। मंदिर में अमुक कलर पहनकर, आज भी आप साउथ में जाएंगे मोस्ट ऑफ मंदिर में, आपको कुछ मंदिरों में काले कपड़े पहनकर पंडित जी रहते हैं, कहीं लाल होता है, नहीं था। हम हर कलर को रेस्पेक्ट करते हैं, अपने अपने समय के अनुसार हर चीज को मानते हैं, हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। हर कलर का अपना महत्व है। डोंट बी ब्लैक एंड व्हाइट, बी कलरफुल। बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि रोज बच्चों को कलरफुल खाना दो, कलरफुल सब्जी दो, हर रंग के फल खाना चाहिए, हर रंग की सब्जी खाना चाहिए। देवियों सज्जनों, ये सिर्फ फल और सब्जी की बात नहीं है। बच्चे तो, बच्चों को तो आप बोल देते हो कि कलरफुल सब्जियां खाओ, कलरफुल फल खाओ, पर बड़े होकर के आप कितना बेकलर हो चुके हो ये आपको पता नहीं है। बच्चे भी आपसे ऊब जाते हैं, आपकी स्पाउस पति पत्नी भी आपसे ऊब जाते हैं। तभी तो मैंने कहा शादी धूमधाम से करते हो, 15 साल के बाद कितना रसहीन हो जाते हो कि तुम्हारी पत्नी या पति ही तुम्हें झगड़ता रहता है, झगड़ती रहती है। आपको लगता है कि सामने वाले में रस कम हो गया हो, पर असलियत यह है कि तुम में ही सारा रस खत्म हो चुका है। अपने रस को भरो, इसका अर्थ नहीं कि दूसरों को देखो कि तुम्हारे में रस कम है। यह हमेशा हमने नोट किया, प्रवचन के बाद जो मैसेज किया जाता है पता है, तुम ही खराब हो, प्रवचन में बोल रहे थे ना रस कम हो गया, तुम्हारे में कम हो गया है। ये नहीं कहा मैंने, खुद में कम हो गया है। दूसरों को मत समझाओ, खुद को करेक्ट करो। जब तक दूसरों से ढूंढते रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो भी तो तुम में ढूंढेगा। देवियों सज्जनों, जीवन कलरफुल है, उसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है, सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, सबका अपना अपना रोल है, सबको एक्सेप्ट करो। सुख है, दुख है, और लाइफ बैड एंड गुड में नहीं चलता है। देवियों सज्जनों, सुख और दुख में भी नहीं चलता, सुख दुख के भी कितने सारे कलर्स होते हैं। बैड एंड गुड के बीच में भी बहुत सारे, हल्का गुड, ज्यादा बैड, हल्की बैड, ज्यादा, कितने सारे वेरिएशंस होते हैं। हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखो, हर कलर को समझो। आपके जो कर्म फल है क्या वो भी बड़ा कलरफुल होता है जी। रिकॉग्नाइज करो, खुद को कलरफुल बनाओ। कलरफुल का अर्थ में आज की होली की भाषा में रसिया बनाने के लिए नहीं कहता हूं। जीवन में आने वाले हर कलर को एक्सेप्ट करो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो। जैसे आप हर तरह के खाना खाते हो, करेला भी खाते हो, उसका भी मजा लेते हो, रसगुल्ले का भी मजा लेते हो, नमकीन का भी मजा लेते हो, इसी तरह जीवन में आने वाले हर सुख दुख, अच्छे बुरे, हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। हर एक का अपना अपना रोल होता है। वो दुख का भी कोई फायदा है, कोई आगे मिल सकता है, उस सुख का भी कोई नुकसान हो सकता है आगे जाकर। हर एक को एक्सेप्ट करो देवियों सज्जनों। इन व्हिच एवर सिचुएशन वी आर इन, वी शुड प्ले द कॉरेस्पॉन्डिंग रोल इन द हील्ड एंड देन लाइफ इज बाउंड टू बिकम कलरफुल। आपको पता नहीं है, आप अनजाने में जो जो रोल करते रहते हो बचपन से आज तक, आपने कितने कलरफुल काम किया है। सोचिए आप पैदा कहां हुए थे, आपकी परवरिश कैसी हुई थी, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, टीनेज में आपका लाइफ कहां बीता, कैसे बीता, जवानी में आप क्या सोचते थे, क्या करते थे, फिर जब जॉब करने लगे तो लाइफ कैसा हुआ, शादी के बाद लाइफ कैसा हुआ, बच्चे पैदा हुए तो लाइफ कैसा हुआ, जब आप मैच्योर्ड हो गए 50 साल के हुए तो लाइफ कैसा हुआ, जब आपके बच्चे बड़े होकर बाहर चले गए तो लाइफ कैसा हुआ। कितने लाइफ में कलर आपने देखा है। बहुत सारे लोग इनमें से बहुत सारे कलरों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लोग हर कलर को एंजॉय करते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कलर बिल्कुल एंजॉयबल नहीं होता है। यही दुख शुरुआत होता है। इसी को हमारे यहां कहा कि हर कलर को एंजॉय करो, तो इसलिए हमने कहा वर्णाश्रम। आपको पता है वर्ण का एक मतलब तो होता है क्लास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आपको पता है वर्ण का दूसरा मीनिंग क्या होता है, कलर रंग। संस्कृत में रंग को वर्ण भी वर्ण बोलते हैं। ये लाइफ ये जो वर्ण आश्रम है, क्लास और स्टेट सिस्टम, ये भी उस कलर पर बेस्ड है। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट लाइफ में अपने वो संयम जीवन को आप जीते हैं। गृहस्थ आश्रम में आप संसार के सुखों को भोगते हैं। वानप्रस्थ में आप संयमित जीवन को जीते हैं और संन्यास में आप परम मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। पूरे लाइफ में हर तरह के भोग को भोगने की कोशिश करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष हर तरह के भोग करते हैं। देयर आर डिफरेंट कलर्स एसोसिएटेड विथ आवर फीलिंग एंड इमोशंस ऑल्सो। आपके इमोशन को देखिए, फीलिंग को देखिए, कितने तरह के कलरफुल आपके और हमारे इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। उनको भी देखिए, हमारी इच्छाएं, हमारे क्रोध, हमारे प्यार। ऐसा नहीं कि कोई गुस्से का एक ही कलर होता है। आपके गुस्से में भी प्यार होता है कभी, आपके गुस्से में भी कोई बर्बादी का भाव छुपा होता है। कभी कभी आपके गुस्से के पीछे क्रिएटिविटी छुपी होती है। हर फीलिंग का अपना अपना कलर होता है, उस कलर को पहचाने देवियों सज्जनों। ऑल कलर्स इमेनेट फ्रॉम व्हाइट एंड व्हेन मिक्स्ड अगेन दे बिकम ब्लैक। व्हेन योर माइंड इज व्हाइट एंड कॉन्शियसनेस प्योर पीसफुल हैप्पी मेडिटेटिव डिफरेंट कलर्स एंड रोल्स इमर्ज। जब आप मेंटल स्टेट पर शांत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, जो माइंड जहां से आपकी सारे कलर निकलता है, गुस्सा प्यार द्वे अच्छा बुरा जितने तरह के फीलिंग माइंड से निकलता है, अगर आप उसको शांत कर दें, सफेद बना दें, तो फिर आप कलरों को ज्यादा इजीली एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप उसको ब्लैक कर दें तो हर कलर को आपको मिजरेबल एंजॉय करेंगे, फिर आपको एंजॉयमेंट नहीं आएगा। इसीलिए होली को अंदर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। होली सोशल फेस्टिवल भी है। हम अपनी, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्ञानी है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, वो उस दिन हम सब एकाकार हो जाते हैं। हर कोई किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है। हम एक दूसरे को समान भाव से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं देवियों सज्जनों। इसीलिए when you sprinkle colors of joy on others, they'll reflect on you manifest. जब आप दूसरों के जीवन में भी कलर ला सकते हैं, तो आपके जीवन में अपने आप कलर आता है। बिल्कुल वैसे जब आप रंग दूसरों पर छिड़काते हैं, तो आप पर भी रंग छिड़कते हैं। ऐसे ही अगर आप कलर दूसरों के जीवन में ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में अच्छी चीजें ला सकते हैं, वो ये अच्छी चीजें आपके लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इस होली के अवसर पर यजुर्वेद का एक सुंदर मंत्र है। आपको पता है जो होली आप सेलिब्रेट करते हो स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में, द फर्स्ट डे ऑफ वसंत ऋतु, स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक दूसरा नाम है संस्कृत में, वसंत ऋतु तो है, उसे हम मधुमास कहते हैं। मधु का अर्थ समझते हैं, हनी, स्वीट, स्वीट सीजन। इस मौसम में हर कुछ अच्छा लगता है, इसी का एक मंत्र है, मधुवाता रितायते मधुक्षरंति सिंधवः माध्वेर्न संतु औषधिः। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में भी प्रकृति मधुमय बने, फुल ऑफ स्वीट बने आपके लिए। नेचर, ये पहाड़, ये प्रकृति, ये आकाश, ये धरती, आपके पड़ोसी, आपके घर के घर वाले, आपके खुद का मन, आपका शरीर, सब आपके लिए मधुमय बने, आपके जीवन में मधुमास आए और जीवन आपका ज्यादा रंगों से भरा हुआ हो, आप जीवन को ज्यादा सुख से जी सकें। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।